गाथा में आप सुन रहे हैं एरोनिका पार्कर जोन्स की लिखी कहानी साजिशबाज औरत। लीजिए सुनिए कहानी का तीसरा भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना, घर आने पर वॉल्टर एलिजाबेथ को बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आई है। वॉल्टर अपनी सेक्रेटरी हेजल के साथ घर आया है जहां एलिजाबेथ और हेजल की पहली मुलाकात होती है। एलिजाबेथ उन दोनों को घर पर ही छोड़कर रेमंड से मिलने जाती है। वहां रेमंड उसे बताता है कि उसने आज वॉल्टर को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की है। ये सुनकर एलिजाबेथ हक्की बक्की रह जाती है और रेमंड को वापस अपने घर जाने की सलाह देती है। अब आगे।
शायद तुम ये कहना चाहती हो लिस कि अब तुम मुझसे नहीं मिलोगी, रेमंड ने उसकी तरफ देखते हुए कहा।
तुम ठीक समझे, एलिजाबेथ की आवाज में रूखापन था।
लेकिन मैं अब हेजल के पास हरगिज वापस नहीं जाऊंगा, रेमंड ने मजबूत लहजे में कहा। मैं उससे तंग आ चुका हूं, वो हर वक्त मुझे बेकारी के ताने देती है। अब मैं उसके ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तुम्हारी मर्जी, एलिजाबेथ ने कंधा उचकाते हुए बेपरवाही से कहा।
लेकिन अब मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। इस महीने का किराया दिया जा चुका है, यहां तुम ये महीना खत्म होने तक रह सकते हो। मैं इस कमरे में ठहरना नहीं चाहता हूं लिस, रेमंड ने कहा। ये कमरा मुर्गियों का दड़बा है।
एलिजाबेथ उसकी इस बात से सहमत थी। इस कमरे को मुर्गी के दड़बे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे खुद यहां आकर बहुत उलझन होती थी।
मैं फ्लोरिडा जाना चाहता हूं लिस, मुझे सूरज की रोशनी बहुत पसंद है। मैं चाहता था कि हम शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए फ्लोरिडा जाएं,
रेमंड ने ठंडी सांस भरते हुए कहा।
खैर, वो एक ख्वाब था। मुश्किल यह है कि फ्लोरिडा जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आजकल मेरी जेब एकदम खाली है। ब्लैकमेल, एलिजाबेथ ने सोचा।
फिर उसने रेमंड से कहा, मैं कल सुबह बैंक जाऊंगी, मुमकिन है कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हों। एलिजाबेथ ने सोचा कि उसे रेमंड को कुछ हजार डॉलर देने पड़ेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में उसकी इस शहर से गैर मौजूदगी बहुत जरूरी है। चंद हजार डॉलर में ये सौदा बुरा नहीं है। दूसरे दिन सुबह 11 बजे जब एलिजाबेथ नाश्ता कर रही थी तो हेजल कमरे में दाखिल हुई। वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे रोने की वजह से सुर्ख हो गई हों।
मिस्टर वॉल्टर अभी सो रहे हैं, एलिजाबेथ ने उसे बताया।
उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पहुंचते ही उन्हें जगा दूं।
तुम कॉफी पियोगी डियर हेजल?
यस यस। हेजल कुर्सी पर ढेर हो गई और फौरन सिसकियां लेकर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा,
मिसेस वॉल्टर, मेरा ख्याल है कि मुझे आपको और मिस्टर वॉल्टर को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आप दोनों को सब कुछ मालूम हो जाएगा।
तुम क्या बताना चाहती हो हेजल, एलिजाबेथ ने नर्म लहजे में पूछा।
पीटर,
हेजल ने कहा,
आप पीटर को जानती हैं? वो हमारे ऑफिस में प्यून है, वो तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहा है। आज सुबह कुछ कागजात लेने ऑफिस गई थी, वहां मुझे इन अफवाहों के बारे में पता चला। उसका कहना है कि कल जिस आदमी ने मिस्टर वॉल्टर को कुचलने की कोशिश की थी वो मेरा पति है। वो कहता है कि वो उस वक्त गली के नुक्कड़ पर खड़ा था, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसका दावा है कि मेरे पति ने मिस्टर वॉल्टर को जानबूझकर मारने की कोशिश की थी।
एलिजाबेथ की सांस रुक सी गई। जानबूझकर? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हारा पति मेरे पति को जानबूझकर मारने की कोशिश क्यों करेगा?
आपको यकीन नहीं आएगा मिसेस वॉल्टर, उस कमीने पीटर का कहना है।
ये कहते हुए हेजल का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
मेरे और मिस्टर वॉल्टर के भी कारोबारी रिश्तों के अलावा भी रिश्ते हैं। पीटर का कहना है कि इस रिश्ते की जानकारी मेरे पति को हो गई है, इसीलिए उसने मिस्टर वॉल्टर को मारने की कोशिश की।
ओह, एलिजाबेथ ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली। उसने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। ये ख्याल बुरा नहीं है, एलिजाबेथ ने सोचा। अगर कभी पुलिस ने रेमंड को पकड़ा भी तो रेमंड का यही बयान पुलिस को शांत कर देगा कि उसकी पत्नी का मिस्टर वॉल्टर से इश्क चल रहा था, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए अपनी पत्नी के बॉस को कत्ल करने की कोशिश की। ऐसा बयान देने के लिए भले मुझे रेमंड को खासी बड़ी रकम देनी पड़ेगी, लेकिन अभी परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि रेमंड फिलहाल फ्लोरिडा फरार हो रहा है। ओह हेजल, मुझे इन अफवाहों पर जरा भी यकीन नहीं है, एलिजाबेथ ने बड़े ही मीठे लहजे में कहा। शुक्रिया मिसेस वॉल्टर, पीटर ने कल ही पुलिस को यह खबर दे दी थी कि जिस गाड़ी ने मिस्टर वॉल्टर को कुचलने की कोशिश की थी उसे मेरा पति ड्राइव कर रहा था। पुलिस रात में मेरे घर आई थी, उसने मुझसे रेमंड के बारे में कई सारे सवाल पूछे। मैंने पुलिस को बताया कि वो एक हफ्ते से घर नहीं आया है, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि वो कहां रह रहा है। अलबत्ता मुझे अपने पति की कार का नंबर बताना पड़ा जिसे वो आजकल चला रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो उसे ढूंढ निकालेंगे। शायद मुझे पुलिस को उसकी कार का नंबर नहीं बताना चाहिए था,
लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
पुलिस ने मुझसे पीटर के बयान के बारे में कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि पीटर ने पुलिस को ये बात न बताई हो कि मेरे पति ने जानबूझकर मिस्टर वॉल्टर को मारने की कोशिश की थी। ये भी हो सकता है कि पीटर ने पुलिस से ये बात कही हो लेकिन पुलिस ने इस बात पर भरोसा न किया हो। मुझे यकीन है मिसेस वॉल्टर, वो सिर्फ एक हादसा था।
आप रेमंड को नहीं जानती हैं, वो कार चलाते वक्त एकदम दीवाना हो जाता है। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि वो किसी दिन तेज रफ्तार की वजह से किसी को कुचल न दे।
आई एम सॉरी हेजल, एलिजाबेथ अचानक खड़ी हो गई। मुझे इस वक्त एक जरूरी काम से निकलना है, मिस्टर वॉल्टर को जगाकर तुम्हारे आने के बारे में बता देती हूँ। एलिजाबेथ ने बात लेने की जरूरत भी नहीं समझी, उसे बहुत जल्दी थी। उसे फौरन ही किसी न किसी तरह पीटर से मिलना था जो उसके पति के ऑफिस में प्यून था। उसने इस मसले पर बहुत गौर किया, पीटर को मैनेज किए बिना कोई चारा नहीं था। अगर पीटर ने अब तक पुलिस को ये बयान नहीं दिया था कि रेमंड ने वॉल्टर को जानबूझकर मारने की कोशिश की थी, तो वो पीटर को कुछ ले देकर इस बात पर राजी करेगी वो इस मामले में अपनी जुबान बंद रखे। उसने कोट पहना और अपना बड़ा सा पर्स लेकर घर से निकल पड़ी। उसने रास्ते में कार रोककर अपने पति के ऑफिस में फोन मिलाया। इत्तेफाक से फोन पीटर ने ही उठाया था। एलिजाबेथ ने कहा, हेलो पीटर, देखो मेरा नाम मत दोहराना, मैं मिसेस वॉल्टर बोल रही हूँ, तुम समझ गए ना? जी हाँ, पीटर ने उधर से जवाब दिया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। तुम मुलाकात के लिए किसी मुनासिब जगह के बारे में बता सकते हो? मैं वहां पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। पीटर ने उसे एक मेडिकल स्टोर का नाम और पता बता दिया। फिर एलिजाबेथ ने कहा, मैं नारंगी रंग का हैट और सफेद रंग का कोट पहने हुए हूँ, तुम तुरंत ऑफिस से निकलो। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिए गाथा, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे एरोनिका पार्कर जोन्स की लिखी कहानी साजिशबाज औरत। आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।